वो दूध को अगर जूठा कर दे, हैं? अपना मुंह लगा देता है दूध में, तो दूध जहरीला हो जाता है, उसके मुंह का जहर उसमें मिल जाता है। अगर आप उसको पिएंगे तो जहर का काम वो करेगा, है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग भगवत गीता में अगर अपने मत को जोड़ देते हैं, तो उसी प्रकार से हो गया जैसे कि सर्प ने अपना मुंह लगा दिया दूध में, है ना। जो शुद्ध भक्त होते हैं उसमें वो अपने मत को जरा भी नहीं जोड़ते हैं, अपने मत को जरा भी नहीं जोड़ते हैं भगवत गीता में। जो भगवान का मत है उसको ही केवल प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो वही शुद्ध भक्त है, है ना। फिर तो शुद्ध भक्त, तो शुद्ध भक्त का तो मत ही भगवान का मत एक हो जाता है। लेकिन अगर हम शुद्ध बनना चाहते हैं, अगर हम शुद्ध बनना चाहते हैं तो अपने मत को भगवत गीता के में ना जोड़ें, किसी प्रकार की मिलावट ना करें। तो भगवत गीता का ही केवल मत अगर हम श्रवण करते रहेंगे और सुनाते रहेंगे तो हमारा भी मन शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ रूपा जी क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। अब परम प्रमाण भगवान कृष्ण के उपदेशों को कैसे ग्रहण किया जाए, है? कैसे ग्रहण किया जाए? जब तक वो परंपरा के द्वारा प्राप्त नहीं होता है उपदेश, तब तक हम ग्रहण नहीं कर सकते परंपरा के द्वारा। तो जो परंपरा है ये बहुत आवश्यक है, परंपरा की विधि आवश्यक है। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है, निकालिए चौथे अध्याय का कौन सा तीसरा श्लोक है क्या? एवं परंपरा प्राप्तम, चौथे अध्याय का परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः, इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त हुआ इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। सोचिए इतने बड़े राजा थे वो और ऋषि थे, तो भी इस ज्ञान को नहीं जान सकते बिना परंपरा के। सोचो, है? राजा तो इतना बड़ा व्यक्ति होता है कि वो जो बात कहे सब लोग उसको आंखें बंद करके मानते हैं, राजा का इतना प्रभाव होता है। और फिर राजा के साथ साथ वो ऋषि भी है, वो सब कुछ भोगों को त्याग करके वो जो है अपने जीवन को शुद्ध बनाता है, तो वो राजऋषि कहलाता है, जिसे अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है। राजा भी है, अपनी इंद्रियों को भी वश में किया हुआ है। तो इतना जो महान व्यक्ति है राजर्षि, वो भी परंपरा के द्वारा ही इस ज्ञान को प्राप्त करता है। परंपरा में ही सुनता है तो फिर वो बता सकता है भगवद गीता का उपदेश। इसलिए परंपरा की आवश्यकता है। परंपरा में ये भी आप कह सकते हैं, कैसे परंपरा है ये ज्ञान, अगर आप इसको ज्योति मान लें, ज्योति तो एक दिए से दूसरा दिया जलता है और दूसरे दिए से तीसरा दिया जलता है, तीसरे से चौथा दिया जलता है, है ना। तो ये परंपरा है, ये भी परंपरा है। परंपरा से ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है, संगति करके, है? जो भगवान है भगवान की संगति से, है? ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ज्ञान की ज्योति ब्रह्मा जी के मन में जल गई। अब ब्रह्मा जी की संगति करके नारद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो समझ गए ना कैसे एक दिया से दूसरा दिया जला, कैसे कॉन्टैक्ट। जब तक आप संपर्क नहीं करते एक दिए का दूसरे दिए के साथ में, तब तक दूसरा दिया नहीं जलेगा, है ना। तो ज्ञान की ज्योति भी जो है ना अगर प्राप्त करना है तो इसी प्रकार की जो है परंपरा होनी चाहिए, है ना। या परंपरा का एक उदाहरण और भी प्रभुपाद जी बताते हैं, कैसे बताते हैं परंपरा का उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए ये बल्ब है, ये जल रहा है, तो ये जो लाइट है ये कहां से आ रही है, इसमें पावर कहां से आ रही है, पावर हाउस से आ रही है कि नहीं, पावर हाउस से। और पावर हाउस से जितने भी तार हैं, जितने भी तार हैं उनमें कहीं भी अगर कुछ टूट जाए तो लाइट नहीं आएगी, नहीं आएगी। उसी प्रकार से जो परंपरा है, जो भगवान से आने वाली जो परंपरा है, वो भी अटूट होना चाहिए, अटूट। अगर कहीं से भी टूट गई तो आप ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, टूट गई तो ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, अटूट होना चाहिए। या जैसे नदी की धारा है, नदी की धारा है, पानी जहां भी आ रहा है तो वो जो धारा है वो अटूट होती है, कहीं टूटती नहीं। तभी पानी आता है, नदी का पानी, कहीं भी अगर पानी आता है, है? या नहर निकाली जाती है तो पानी आ कैसे रहा है? जो पानी की धारा है वो कहीं टूटती नहीं है, अटूट होती है, है? उसी प्रकार से जो परंपरा है, जो गुरु परंपरा है, वो कैसी होनी चाहिए? अटूट होनी चाहिए, है ना। तो ये जरूरी है भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो श्लोक को फिर से निकालिए। तात्पर्य में रूपा जी क्या लिख रहे हैं? इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। परम प्रमाण भगवान कृष्ण है, मतलब इस बात को समझना है, इस बात में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण ही है जो कि जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। कृष्ण को किसी ने बताया नहीं है, लेकिन कृष्ण पूर्ण पुरुष है, कृष्ण ही सब कुछ जानने वाले हैं, और कृष्ण जो कुछ बताएंगे वही सही होगा, वही कल्याणकारी होगा। यह श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण जो कुछ बता रहे हैं भगवद गीता में वो सही भी है और वो हमारे कल्याण के लिए भी है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। कृष्ण को परम प्रमाण मान करके हैं तब भगवद गीता का अध्ययन किया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हैं? फिर प्रश्न ये उठता है कि अब ये श्रद्धा कहां से आए, ये श्रद्धा कहां से आए कि हम इस पूर्ण विश्वास कर लें कृष्ण पर कि कृष्ण जो कुछ कहा है भगवद गीता में वो बिल्कुल सत्य है और वही सुंदर है और वही कल्याणकारी है। ये श्रद्धा कैसे आएगी? तपस्या, इस जन्म में और पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता है, तब कहीं श्रद्धा पैदा होगी। भक्ति जो है कहां से शुरू होती है? श्रद्धा से। रूप गोस्वामी कहते हैं आदो श्रद्धा, भक्ति में सबसे पहले श्रद्धा होती है। और क्या श्रद्धा है? कि कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही ईश्वर है, और कृष्ण ही सुहृद है, सबके मित्र हैं, पूरे संसार के मित्र कृष्ण ही है, पूरे संसार की रक्षा कृष्ण ही करने वाले हैं, कृष्ण के अलावा और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। अगर कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे तो मेरा बेड़ा गर्क है, दुख ही दुख है, है ना। ये जो श्रद्धा है ये कैसे आई? तपस्या, लेकिन तपस्या। अब यहां पर समस्या आती ना, तपस्या की समस्या आती कि जब तक कोई व्यक्ति तपस्वी ना हो उसके अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं पैदा हो सकती, तपस्या, है ना। इसलिए गीता में भगवान ने अंत में कहा है इदम तेना तपस्काय है, है? देखिए 18वें अध्याय का श्लोक निकालिए। ना भक्ता है कदात न चाशु स्त्रु सबे वास्तम न चमाम यो भी सुयती। भगवान क्या कह रहे हैं? जो तपस्वी नहीं है उसको ये नहीं बताना चाहिए, भगवद गीता नहीं बताना चाहिए, क्योंकि तपस्या के बिना श्रद्धा नहीं हो सकती कृष्ण के प्रति। जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है तो वो जो है अपने को मानता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, है? और कृष्ण भी हमारे ही जैसे कोई व्यक्ति रहे होंगे, है? हो सकता है कृष्ण में कुछ ज्यादा विशेषताएं रही होंगी, कुछ गुण रहे होंगे, लेकिन वो भी तो एक मनुष्य ही थे, हमारे ही जैसे मनुष्य थे, है ना। तो जब व्यक्ति तपस्या अपनी खो देता है तो फिर वो जो है कृष्ण के प्रति श्रद्धा उसकी नहीं रहती, है ना। आप इस तपस्या के लिए क्या किया जाए? तपस्या अगर हमें अपनी बढ़ानी है जिससे हमारे अंदर श्रद्धा पैदा हो, तो तपस्या कैसे बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तपस्या है, इसमें भक्ति नहीं है। हम कृष्ण को भी नहीं जानते, ना कृष्ण में श्रद्धा है ना। इन केवल इस मंत्र का जाप करने से हमको क्या मिलता है? तपस्या का फल मिलता है। इस मंत्र के कोई शोर नहीं करेंगे, जिनको दर्शन किसी प्रकार से लोगों को सुनाया जाए, लोगों से बुलवाया जाए किसी भी बहाने, तो ये जो है तपस्या का फल पैदा करेगी, है ना। अच्छा, आगे इस श्लोक में फिर से आइए आप। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं है? तो ये देख रहे हैं, शुद्ध भक्त ही हैं जो कि हरि नाम का प्रचार करते हैं। कलयुग में जो दया है, अगर कलयुग में अगर कोई दया का कार्य अगर करना है, अच्छा कार्य करना है, तो क्या है? हरि नाम का प्रचार। कली काले युग धर्म हरि नाम प्रचार, हरि नाम का प्रचार करना। तो हरि नाम से जब कोई व्यक्ति शुद्ध होता है तो श्रद्धा के धरातल पर आता है। भगवत गीता के विषय में उसके अंदर श्रद्धा पैदा होती है कि भगवत गीता से मेरा कल्याण होने वाला है। प्रभा जी क्या बता रहे हैं, ये तात्पर्य पांचवें स्कंद के दसवें अध्याय के 18वें श्लोक का है। प्रभा जी लिख रहे हैं, जड़ भरत जैसे साधु पुरुष सामान्य शब्द नहीं बोलते, वे जो कुछ भी कहते हैं वह योगियों तथा सिद्धों द्वारा स्वीकृत हुआ होता है। सामान्य व्यक्ति तथा साधु पुरुष में यही अंतर है। श्रोता को भी जड़ भरत जैसे सिद्ध पुरुष के वचन समझने के लिए प्रबुद्ध होना चाहिए। भगवत गीता अर्जुन को ही सुनाई गई, अन्यों को नहीं। श्री कृष्ण ने जानबूझकर आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन परम भक्त और विश्वास पात्र मित्र था। इसी प्रकार महापुरुष शूद्रों वैश्यों स्त्रियों या ज्ञानियों को उपदेश न देकर ज्ञानियों को ही देते हैं। कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को दर्शन का उपदेश देना घातक भी होता है। यहाँ पर दर्शन का मतलब सिद्धांत, ज्ञान है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित जीवों के लाभ हेतु हमें अमोघ साधन हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रदान किया है। भगवत गीता के विषय को सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनको शुद्ध करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया, अमोघ साधन। जन सामान्य जन समूह यद्यपि शूद्र तथा इससे भी निम्न है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र के जप से वह शुद्ध हो सकता है। तब सभी व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के दार्शनिक वचनों को समझ सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को समझ सके। इसलिए हमारे श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने सामान्य जन समूह के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप को स्वीकार किया है। जब क्रमशः लोग शुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के उपदेश की शिक्षा दी जाती है। स्त्री शूद्र तथा द्विज बंधु जैसे भौतिकवादी प्राणी आत्मोन्नति को नहीं समझ पाते, तो भी उन्हें वैष्णव के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह शूद्रों को भी उच्च ज्ञान प्रदान करने की कला जानता है। ये मतलब ये नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र का हम जाप करते हैं, 16 माला जाप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, बस हमें और कोई मतलब नहीं है। मंदिर के जितने कार्यक्रम हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 4 नियम का पालन कर रहे हैं, 16 माला जाप कर रहे हैं, केवल आप परिश्रम कर रहे हैं, आपको इसका कुछ फल नहीं प्राप्त हो रहा, क्योंकि आपको भगवद गीता सुनने में कोई रुचि नहीं हुई, आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं हुई है कि भगवान कृष्ण ने कुछ आपको संदेश दिया है और आपको समझना है, आपको उसका पालन करना है ना। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप है तो ये आपको सहायता करता है भगवद गीता और श्रीमद भागवत को समझने में। जो चार नियम है वो सहायता करते हैं आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में, नहीं तो चार नियम के पालन करने से भी कोई लाभ नहीं। अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करते, खाली चार नियम का पालन करते तो कोई लाभ नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, भगवद गीता में कोई श्रद्धा नहीं है तो कोई लाभ नहीं हुआ। हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से भी कोई लाभ नहीं हुआ, भगवद गीता में कोई श्रद्धा नहीं है। दूसरा तात्पर्य है प्रभुपाद का, निस्संदेह गंगा स्नान से अनेक संक्रामक रोग दूर हो जाते हैं, किंतु इससे भौतिकता से आसक्त मनुष्य का मन स्वच्छ नहीं हो सकता। देखा गंगा स्नान से क्या होता है, शरीर शुद्ध होता है, लेकिन मन जो है अगर आसक्त है विषय में बहुत तो मन शुद्ध नहीं होता, जिसके कारण भौतिक जीवन में सभी प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। किंतु जो कोई भगवान के कार्यों का श्रवण करके उनकी प्रत्यक्ष संगति करता है वह मन की मलिनता को धोकर शीघ्र ही श्री कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। इसलिए बताया गया है कि गीता और गंगा यद्यपि दोनों ही भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है, लेकिन फिर भी गीता का ज्यादा महत्व है। गीता के ज्ञान रूपी जल में स्नान करने का ज्यादा फल है गंगा के जल में स्नान करने से। यद्यपि गंगा जी भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, बहुत पवित्र है, और भगवत गीता भगवान के मुख से उत्पन्न हुई है ना। जो गीता की जो नदी है इसमें स्नान करने से जितनी शुद्धि होती है वो गंगा नदी में स्नान करने से नहीं होती है, है? क्यों? क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, तो उसका स्थान ऊंचा है, गीता का स्थान गंगा से ऊंचा है, इसलिए इसलिए प्रभुपाद यहां तात्पर्य लिख रहे हैं। क्योंकि जो कोई भगवान के कार्यों का श्रवण करके, श्रवण करने का मतलब स्नान करना, और भगवत गीता भी भगवान का कार्य है, भगवान का उपदेश है, तो जो भी व्यक्ति भगवत गीता का श्रवण करे तो उनकी प्रत्यक्ष संगति करता है। अगर भगवद गीता को आप सुनते हैं तो आप भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर रहे हैं, जैसे अर्जुन भगवान के साथ संगति कर रहे हैं, तो अर्जुन को जो लाभ हुआ भगवान की संगति से वही लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कैसे? श्रवण करके, भगवद गीता का श्रवण करके। तो वह मन की मलिनता को धोकर शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। मन की मलिनता अगर धो जाए तो कृष्ण भावनामृत अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जो शुद्ध मन होता है वही कृष्ण भावना भावित होता है। आगे श्रीमद् भागवत 1:17 में सुत गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है। श्रीमताम तो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हिभद्राणी विधुनोति सुहृतताम। जब कोई भगवान के कार्यों का वर्णन सुनता है तो प्रत्येक के हृदय में बात करने वाले श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं श्रोता के मनोमल को स्वच्छ कर देते हैं। भगवान क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरी कथा सुन रहा है, देखो इस व्यक्ति ने अपने सब काम छोड़ करके मेरी कथा को सुनने के लिए बैठा हुआ है, है ना, तो भगवान प्रसन्न होते हैं ये देख करके। मत कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्ते सुतन बांधवा। भगवान कहते देखो मेरे लिए इसने अपने काम छोड़ दिए, भगवान ये देखते हैं कि इसने अपने बहुत से जरूरी काम छोड़ करके भी ये मेरी कथा सुनने के लिए आया है, भगवान ये देखते हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, उसे सब काम छोड़ दिए तो भगवान के काम सुन रहा है, तो फिर भगवान उसका काम करते हैं, और उसका काम क्या करते हैं, हृदय की सफाई करते हैं, है ना। तो अगर आप भगवान के कार्यों को सुनते हैं तो भगवान फिर आपका काम करने लगते हैं, है ना। और आपका काम क्या है, हृदय गंदा है, तो हृदय की सफाई करते हैं भगवान। तो प्रभुपाल लिख रहे हैं कि जब कोई भगवान के कार्यों का वर्णन सुनता है तो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं श्रोता के मनोमल को स्वच्छ कर देते हैं। हृदयंता से तो यह भद्राणी विदुनोती, वे मन के समस्त मन को धो डालते हैं। अपने मन को धो डालने पर मनुष्य श्री कृष्ण भावनामृत की अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है और इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग के सभी महान संतजन श्रवण विधि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्रवण विधि के द्वारा मन स्वच्छ होता है। श्री प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, इसीलिए भक्ति मार्ग के सभी महान संतजन श्रवण विधि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र के सामूहिक कीर्तन का शुभारंभ किया जिससे प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण कर सके, क्योंकि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण मात्र से मैं पवित्र हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। इसीलिए हमारा श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे संसार में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है। आगे जब हरे कृष्ण के कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य क्रमशः श्री कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त होता है और वह श्रीमद् भागवत भगवद गीता श्री चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को पढ़ता है। कब पढ़ता है व्यक्ति? आपके घर में भगवद गीता की पुस्तक रखी है 10 साल से, आप देखते हैं पर आप खोलते नहीं, कभी पढ़ते नहीं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो आप खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं, है ना? तो अंदर है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से ये अंतर होता है कि आप खोलते हैं। पढ़ने लगते हैं कैसे? क्योंकि मन शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण के कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य क्रमशः श्री कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त होता है और वह श्रीमद् भागवत भगवद गीता श्री चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को पढ़ता है। इस प्रकार वह भौतिक दूषण से अधिकाधिक पवित्र होता जाता है। ये अधिक पवित्र है। जब आप ये पढ़ते हैं पुस्तकें तो आप ज्यादा पवित्र होते हैं, है ना? लेकिन हमेशा तो आप पढ़ नहीं सकते किताब, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप करो। तो प्रभुपाद ने नियम बनाया 16 माला जाप करना, हर हालत में करना, किसी प्रकार कम नहीं करना 16 माला से। लेकिन इसमें सुविधा यह है कि आप जो है 24 घंटे में आपको किसी भी समय अपना 16 माला पूरा करना है, ठीक है? आप चलते फिरते भी आप जाप कर सकते हैं, है? अंधेरे में भी जाप कर सकते हैं, उजाले में। लेकिन आप किताब तो चलते फिरते नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में आप किताब नहीं पढ़ सकते, है? सड़क में तो किताब नहीं पढ़ सकते, ये सड़क में भी आप जाप कर सकते हैं। जाप आप हर समय कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत 1:2:18 में कहा गया है, नष्ट प्रायसो भद्रेशो नित्यम भागवत सेवया भगवतम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने तथा निष्काम भक्ति की सेवा से मन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और यशस्वी भगवान के प्रति सेवा भाव स्थापित हो जाता है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों द्वारा की जाती है। इस प्रकार भगवान के यशस्वी चरित्र के श्रवण मात्र से भक्त का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और उसे चिरंतन दास के रूप में जो भगवान का विभिन्न अंश होता है अपनी मूल स्थिति प्रकट हो जाती है। तो भगवान की कथा श्रवण से क्या होता है? अपनी सुप्त चेतना कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है। और कृष्ण चेतना जागृत होने का मतलब क्या है? कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, ये चेतना आ जाती है। आगे भक्त द्वारा भक्ति में संलग्न होने पर रजो तथा तमोगुण क्रमशः पराभूत हो जाते हैं और वह सतोगुण में ही सारे कार्य करता है। उस समय से प्रसन्नता होती है और वह श्री कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, क्रमशः आगे बढ़ता है।, है मतलब क्या है? कि श्रद्धा से साधु संघ में आता है, है? और साधु संघ से भजन क्रिया में आता है, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा होती है और निष्ठा से रुचि होती है। आगे सभी बड़े बड़े आचार्यों का अभिमत है कि मनुष्यों को श्री भगवान के संबंध में सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, तभी सफलता निश्चित है। जितना ये देख हम अपने हृदयों के मन को स्वच्छ करेंगे, उतना ये देख श्री कृष्ण के नाम रूप गुण वैशिष्ट और कार्यों के प्रति आकृष्ट होंगे। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है, ये सार है। क्या सार है? जितना ये देख हम अपने हृदयों के मल को स्वच्छ करेंगे, उतना ये देख श्री कृष्ण के नाम रूप गुण वैशिष्ट और कार्यों के प्रति आकृष्ट होंगे। सार समझ गए क्या है? कृष्ण भावनामृत का सार क्या है? जितना ये देख हम अपने हृदय के मल को स्वच्छ करेंगे, उतना ही देख हम कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं के प्रति आकृष्ट होंगे, आकृष्ट होंगे। ये लक्ष्य है। जितना आकर्षण हमारा कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं के प्रति हो, हाँ, उतना ही देख हम कष्टों से छूट जाते हैं, फिर कोई समस्या नहीं। हजारों समस्याएं आती हैं हमारे ऊपर, पर आएंगी। मंदिर की भी बड़ी समस्याएं हैं, कैसे मंदिर चलाएं। लेकिन अगर मंदिर में रहने वाले जितने भक्त हैं, अगर इसी में लग जाएं, अपने हृदय को स्वच्छ करने में लग जाएं, श्रवण कीर्तन में लग जाएं, तो मंदिर की कोई समस्या नहीं रहेगी, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। क्योंकि फिर भगवान जो है स्वयं उसकी देखभाल करने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि ये भक्त जो है मेरी कथा के सुनने में लगा हुआ है, इसे बाकी सब कोई चिंता ही नहीं है, तो फिर भगवान को चिंता होती है। उसके बाकी जितने सब काम हैं भगवान सब करते हैं। उसकी जो सुरक्षा है वो भी चिंता भगवान के ऊपर आ जाती है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी चिंता भी भगवान के ऊपर आ जाती है। भगवान क्या देखते हैं कि ये तो मेरी कथा सुनने में लगा है, इसे तो कोई चिंता ही नहीं है, है? आगे क्या दिक्कतें आएंगी इसे पता ही नहीं है, इसको तो सोचते ही नहीं। तो भगवान स्वयं ही जो है ना व्यवस्था ऐसी करते हैं कि आगे दिक्कतें ना हो और इसके कथा सुनने में कोई बाधा ना पड़े, इसलिए भगवान स्वयं करते हैं। तो ये बहुत व्यवहारिक है और भगवान ने गीता में कहा भी है कि भक्ति प्रत्यक्षावगमन प्रत्यक्ष इसका फल है। भक्ति का जो फल है वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष करके देखो। प्रत्यक्षावगमन धर्मम सुसुखम करतुम, और बहुत सुख पूर्वक इसको किया जाता है। हम साधु संग करते हैं तो हमको जो है गधे घोड़े की तरह काम नहीं करना पड़ता है। साधु की सेवा करते हैं, साधु का संग करते हैं, श्रवण करते हैं, इसमें कोई परिश्रम नहीं होता है गधे घोड़ों की तरह। बहुत सुख पूर्वक हम साधु संग से जो है फल प्राप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है आपका?
आपने बताया था
जिनका प्रश्न है कि अगर हम हरिनाम का जाप कर रहे हैं और भगवत गीता में श्रद्धा नहीं है तो हरिनाम का कोई फायदा नहीं है। हरिनाम का फल यही है कि जब हमारी भगवत गीता में श्रद्धा पैदा हो जाए भगवान के वचनों में, भगवान के आदेशों में, कि हमें ये करना ये नहीं करना, ठीक है ना। आप इनका प्रश्न कि अजामिल को तो कोई श्रद्धा नहीं थी, उसका उद्धार हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ उस नाम से? अब अगर आप कहते हैं उद्धार हुआ तो क्या उद्धार हुआ, कैसे हुआ है? जब उसने नारायण उच्चारण किया, ठीक है, उसका फल क्या हुआ? उसको साधु संग मिला। कौन आए उसकी रक्षा करने के लिए? विष्णु दूत आए, भगवान के पार्षद आए, साधु संग आए, है ना। और साधु वो जो भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने क्या बोला? उसने सुना उनसे, है? उसने भगवान की महिमा सुनी विष्णु दूतों के द्वारा। और उसको श्रवण करके उसको क्या हुआ, बहुत दुख हुआ है ना कि मैं कितना पापी हूं। उसकी चेतना शुद्ध हुई, उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं बहुत पापी हूं, मैंने भगवान के आदेश का उल्लंघन किया। और इस तरह से जो है उसने फिर वो सब पाप कर्म छोड़ दिए और फिर वो हरिद्वार में आया विष्णु के मंदिर में, और फिर वो विष्णु के नाम और रूप का जो है निरंतर चिंतन करने लगा, आगे बढ़ा, है ना। भगवद गीता में क्या है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, ये भगवद गीता है। तो वो समझ सका भगवान के नाम को, समझ सका भगवान के नाम की महिमा को, समझ सका भगवान के रूप को, समझ सका है? और फिर उसने भगवान के रूप में मन लगाया अपना। तो एक क्रम से होता है, कोई व्यक्ति नाम के द्वारा फिर भगवान के रूप को समझ सकता है, भगवान का रूप ये है, और भगवान के रूप से फिर भगवान के गुणों को समझ सकता है, भगवद गीता का विषय। हाँ, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो दुराचारी व्यक्ति है तो वो इस चीज को समझ नहीं पाता है, आत्मज्ञान की बात को नहीं समझ पाता है दुराचारी व्यक्ति, जबकि भगवान कहते हैं दुराचारी भी अगर अनन्य भजन करे तो वो साधु मान्य हो गए, है ना। तो वो समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी भक्ति योग की विधि अगर वो स्वीकार कर ले तो समझ जाएगा। भक्तिया माम अभिजानते, भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे जान सकता है, और वो सदाचारी भी हो जाएगा, सब भक्ति के द्वारा संभव है। भक्तिया माम अभिजानते, भगवान कहें कोई दुराचारी भी अगर अनन्य भजन करे, किसी प्रकार से अगर अनन्य भजन करे मेरा, है ना, तो साधु मानने योग्य है, और वो बड़ी जल्दी